मध्यकालीन और आधुनिकता। मध्यकाल का मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह धर्म द्वारा स्वीकृत आचरण से करता था। अपनी मान्यताएं, विधि निषेध, उचित अनुचित, नैतिकताएं एवं मूल्य, सब कुछ का निर्धारण धर्मतंत्र अर्थात धार्मिक पुस्तकों, धर्म संस्थाओं, धर्म गुरुओं आदि की व्यवस्थाओं के आधार पर करता था। कहना गलत न होगा कि मध्यकाल में मनुष्य के जीवन का केंद्रीय तथ्य धर्म रहा है। समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीति, युद्ध नीति के संबंध में विधि निषेध धर्म द्वारा निर्धारित किए गए। इसका यह आशय कतई नहीं है कि समाज के विभिन्न अंगों पर ये नियम समान रूप से लागू किए जाते थे। हमेशा की तरह समाज के प्रभावी वर्ग अपनी सामाजिकता, श्रेष्ठता एवं प्रभाव के आधार पर इन नियमों से छूट लेते रहे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन नियमों को तोड़ा, मरोड़ा और परिवर्तित किया। जहाँ एक और इन वर्गों ने अपने को इन नियमों से श्रेष्ठ साबित किया, वहीं इन्हीं नियमों को आधार बनाकर समाज के कमजोर, दलित एवं पिछड़े हुए वर्गों का शोषण भी किया। धर्म के विभिन्न अंगों पर उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली अथवा धर्म सत्ता से मजबूत गठजोड़ कायम किया। सामंतवादी व्यवस्था एक और समाज के विभिन्न अंगों को गतिशील बनाती रही, वहीं दूसरी ओर समाज में पहले से मौजूद वर्ग भेद, असमानता और शोषण को अधिक मजबूत, सूक्ष्म और हिंसक बनाती रही। इस युग में सामाजिक असमानता व भेद को धर्म के आधार पर वैध, नीतिपरक और उचित साबित करने के लिए धार्मिक नियमों की नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की गईं। मध्यकालीन समाज द्वारा स्वीकृत अपूर्ण व अधूरा ज्ञान ही वास्तविक व अंतिम मान लिया गया। तकनीक के विकास को तो एक हद तक प्रोत्साहित किया गया, परंतु ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में नवीन खोजों को कुंठित एवं प्रतिबंधित किया गया। विभिन्न देशों और समाजों में समय के थोड़े बहुत अंतर के साथ 13वीं से 16वीं शताब्दी में धर्मसत्ता के वर्चस्व के विरोध में धार्मिक आंदोलन हुए। अंधविश्वासों, कुरीतियों और सामाजिक विषमताओं से उपजे भेद के विरोध में धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर धर्म के वास्तविक एवं मूल उपदेशों पर जोर देने वाले कवियों, उपदेशकों और समाज सुधारकों का उदय हुआ। यूरोप में मार्टिन लूथर एवं उनके जैसे अन्य सुधारक, अरब देशों में विभिन्न सूफी संत और भारत में कबीर, गुरु नानक, रैदास और दादू जैसे कवियों ने, उपदेशकों ने धर्म के मानवीय प्रेम मूलक रूप पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक समता व समरसता पर बल देने वाले उपदेशों पर जोर दिया। उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के इन सभी संतों की दृष्टि यद्यपि उस अर्थ में आधुनिक नहीं थी जिन अर्थों में 20वीं शताब्दी में आधुनिकता शब्द का प्रचलन हुआ, परंतु धर्मसत्ता के वर्चस्व के विरोध, मानवीय समता पर बल और तर्कपरता कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर इन विचारकों को आधुनिक युग के पूर्व आधुनिकता का बीजारोपण करने वाले विचारकों के रूप में देखा जा सकता है। ये कवि जनता की एकता और मनुष्य मात्र की समानता का समर्थन करते थे। उन्होंने भेदकारी जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ईश्वर और मनुष्य के बीच कार्य करने वाली धार्मिक मध्यस्थों की कड़ी पर गहरा प्रहार करने के साथ ही उन्होंने धर्म गुरुओं द्वारा नियंत्रित धर्म ग्रंथों और धर्म स्थलों को गैर जरूरी करार दिया। धर्म तंत्र पर यह प्रहार वस्तुतः यूरोपीय धर्म सुधार से एक कदम की कार्यवाही थी। इस प्रक्रिया में तार्किकता और विवेकशील बुद्धि संगता के लक्षण प्रखरता से मौजूद थे। यदि हम भक्ति आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें, तब भी यह स्पष्ट होता है कि मध्यकाल के इस छोर पर ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन प्रारंभ हो गए थे जो सामंतवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और मध्यकालीन विचारों के पराभव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार बन सकते थे। प्रसिद्ध विचारक के दामोदरन मानते हैं, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समस्त जनता की एकता पर यह जोर दिया जाना ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुरूप था। समय की मांग थी कि जाति पाति और धर्मों के भेदभाव पर आधारित तुक्ष सामाजिक विभाजनों का जो घरेलू बाजार के विकास और उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के कारण अब एकदम निरर्थक हो गए थे, अंत किया जाए। ईश्वर के सम्मुख प्राणियों की समानता का सिद्धांत उस नई सामाजिक चेतना का द्योतक था जो सामंती शोषण के विरुद्ध जूझने वाले किसानों और कारीगरों में फैल रही थी। व्यक्ति के गुणों और योग्यताओं पर जोर तो ऊंची जाति अथवा किसी विशिष्ट वंश में जन्म लेने के फलस्वरूप प्राप्त सुविधाओं के विपरीत था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ऐतिहासिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह नारा एक नए पूंजीपति वर्ग का, जिसका की उदय हो ही रहा था, नारा था। प्रेरणाओं के मध्ययुगीन होने के कारण भक्ति आंदोलन सामंतवादी विचारधाराओं द्वारा अंततः नियोजित कर लिया गया। बावजूद इससे सामंतवादी सामाजिकता धर्मतंत्र और राजसत्ता से दीर्घ मुठभेड़ की समाज की ताकतवर प्रभुसत्ता को विस्थापित कर समानता को सुनिश्चित कर सकने वाली सामाजिक आर्थिक शक्तियों के कमजोर और असंगठित होने के कारण कोई मूलभूत परिवर्तन न आ सका। इन शक्तियों ने समाज रचना में अनेक संशोधन किए और अनेक वैकल्पिक समुदायों के उभरने में मदद की। मध्यकालीन वैचारिकता और धर्मतंत्र से ताकतवर लड़ाई लड़ने वाले अनेक क्रांतिकारी कवियों की उपस्थिति के बावजूद भक्ति आंदोलन की प्रायः सभी धाराएं मध्यकालीन सामंती तंत्र द्वारा चोक ली गई। इसका सबसे बड़ा कारण संभवतः भक्ति की धर्म से गहरी संबद्धता थी, जिससे संतों के परिवर्तन अनुयायी प्रायः उसे धर्म का अंग मानने लगे और धीरे धीरे ताकतवर धर्मतंत्र ने भक्ति की प्रगतिशील रवायतों और विचारों पर पुराने विचारों की चादर डाल दी। भक्ति के माध्यम से प्रकट होने वाली तार्किक और प्रश्न कर सकने की शक्ति का लोप होता गया और उसके स्थान पर भावनात्मक प्रबल होती गई। स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष कर सकने के लिए जरूरी तर्कसंगत विवेचन की प्रणालियां विकास न कर सकी। परिणाम यह हुआ कि समानता की भावना भी अंततः समाज में फैलने और गहरे जाने की बजाय भक्ति की मनोसंरचना और भक्ति काव्य की कथन प्रणाली का ही हिस्सा बनकर रह गई। यह अकारण नहीं है कि जिन संतों कवियों के विचारों में स्वतंत्रता समानता और न्याय की महान अभिव्यक्तियाँ थी, उनके ही संप्रदायों में बाद में ताकतवर मठवाद उभरा और संकीर्णवादी पौरोहित्य ने पैर पसारे। ये दामोदरन उचित ही लिखते हैं, यदि यह आंदोलन सदा के लिए सामाजिक असमानताओं और जाति प्रथा से उत्पन्न अन्यायों को खत्म नहीं कर सका तो संभवतः इसका कारण यह था कि कारीगर, व्यापारी और दस्तकार, जो इस आंदोलन का मुख्य आर्थिक आधार थे, अब भी कमजोर और असंगठित थे और इसके पहले कि उदयीमान पूंजीपति वर्ग एक वर्ग के रूप में अपना पूर्ण विकास प्राप्त करे। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने देश को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। ब्रिटिश पूंजीपतियों के आगमन ने भारत में आधुनिकता के विकास को बल दे सकने वाले भारतीय पूंजीपतियों के ताकतवर होने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की। इससे आधुनिकता का कोई शुद्ध भारतीय रूप विकसित न हो सका, परंतु ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रभाव से उस यूरोपीय आधुनिकता का प्रसार प्रारंभ हुआ, जिसका जन्म यूरोप की विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ।